का था, रूह वही, रूप नया।
मनी ऑर्डर। डाकिया अभी जीने से नीचे उतरा भी नहीं था कि दादाजी ने आवाज दी, गोलू बेटे जाओ तो सबके लिए आइसक्रीम ले आओ। गोलू जैसे इस इंतजार में ही था, फट से चप्पल पहन करके आकर के खड़ा हो गया। गौरी को इतना गुस्सा आया, भक्कड़ कहीं का आइसक्रीम के नाम से जैसे इसकी लार टपकती है। उसका मन हुआ कि हाथ पकड़ करके उसे रोक ले, पर वो रुकेगा थोड़ी, मम्मी से डांट और पड़वाएगा। इतनी गुस्सा आती है उसे कभी कभी। 1,000 रुपये का मनी ऑर्डर क्या आ जाता है, दादाजी ऐसा जश्न बनाते हैं जैसे 1,00,000 रुपए की लॉटरी लग गई है। बेचारे मम्मी पापा 300 दिन इनको झेलते हैं, उनकी कोई तारीफ नहीं होती। और बड़े पापा का मनी ऑर्डर आया नहीं कि बस दादाजी ऐसे बाग बाग हो जाते हैं। वो पढ़ने बैठती है तो सारा टाइम उसका इसी उधेड़बुन में बीत जाता है। मम्मी कहती है इतनी सी उम्र में इतना गुस्सा मत किया करे, लेकिन गुस्से की बात होती तो गुस्सा आएगा ही ना। दीदी आइसक्रीम, पीछे खड़ा गोलू चिल्ला रहा था। इतनी देर में वो लौट भी आया, साइकिल पे गया होगा, आइसक्रीम के लिए तो कुछ भी करेगा। दीदी आइसक्रीम मुझे नहीं खानी। सच्ची? कह तो दिया, कितनी बार पूछेगा। दीदी गुस्सा है ये तो समझ गया, लेकिन उसने कोई परवाह नहीं की। एक साथ दो दो आइसक्रीम खाने का मौका रोज थोड़ी मिलता है। वो झट से अपनी दोनों आइसक्रीम लेके बाहर चला गया। वो किताबों में सिर डालकर गौरी पढ़ती रही। आइसक्रीम समारोह समाप्त होके आधा घंटा भी नहीं बीता होगा कि मम्मी चाय लेकर आ गई। रोज की तरह उसके साथ थोड़ा चबेना भी था। दादाजी बोले, अरे आज तो पालक के पकौड़े खाने का मन था, सुबह तुमने पालक ली थी ना ठेले वाले से, तब से ही सोच रहा हूँ अभी बना दूं। अरे नहीं अब रहने दो, ऐसा करो रात को पकौड़े वाली कढ़ी बना ले। दादी बोली, अरे वाह मैं तो सिमइयों की सोच रही थी। अरे तो सिमइयां भी बन जाएंगी, ऐसा थोड़ी कि दोनों चीजें एक साथ नहीं बनती, जिसे जो पसंद आए वो खाए, क्यों बोलू। मुझे तो दोनों पसंद है, गोलू बोला। और हमारी गुड़िया को क्या पसंद है। गुड़िया ने जवाब नहीं दिया, किताबों में सिर डाल करके बैठी रही। फिर वो दोनों शुरू हो गए, अब तुम शाम को कढ़ी खाओगे और रात भर ठुल्ल ठुल्ल करोगे, ना खुद सोगे ना हमें सोने दोगे। और तुम जो खीर खाओगी और रात को गैस बनेगी तो चूरण मत मांगना मेरे से। उन दोनों की बहसबाजी शुरू हो गई थी। उसमें कोई मुद्दा नहीं होता है, उनका टाइम पास होता है, लेकिन बेचारी गौरी उसके तो पढ़ने में डिस्टर्ब होता है ना। अब ले दे के यही कमरा है उसके पढ़ने के लिए। मम्मी का कमरा तो पूरा गोदाम बना हुआ रहता है और उसमें गोलू की किताबें फैली रहती है। बाहर के कमरे में मम्मी बैठने नहीं देती, कहती अरे एक तो कमरा ढंग का रहने दो घर में, कोई भला आदमी आए तो उसे मैं कहाँ बिठाऊंगी। सच, हर घर में बच्चों के लिए एक अलग से कमरा होना चाहिए। उसे बड़े पापा का बंगला याद आया। ऊपर की मंजिल पे दोनों भैया लोगों के अलग कमरे हैं, गेस्ट रूम अलग। नीचे मम्मी पापा का विशाल बेडरूम, विशाल हॉल, हॉल से लगा बड़े पापा का ऑफिस रूम, और दूसरी तरफ बड़ी मम्मी का ड्राइंग रूम जिसमें उनकी किटी पार्टियां होती हैं। लेकिन इतने बड़े घर में दादा दादी के लिए कहीं जगह नहीं। जब से उसे याद आया है दादा दादी उन्हीं लोगों के पास रहते। बैठे बैठे जब ऊब गई तो रसोई में चली गई। यही ले दे के 2-3 कमरे में आदमी कोई भाग कर जाए भी तो कहां। मम्मी बेसन फेंट रही थी, उसे देखते ही बोली, अरे बेटा जरा बेसन का डिब्बा उठाना, शायद पानी ज्यादा पड़ गया। उसने मम्मी की बात सुनकर भी अनसुनी कर दी और वहीं टिक करके एकटक उन्हें देखने लगी। उसकी उस दृष्टि से असहज होते हुए मम्मी बोली, क्या हो गया, मुंह क्यों सूजा हुआ है। क्या बड़े पापा के मनी ऑर्डर का जश्न बनाना जरूरी है, क्या मतलब पकौड़े क्या आज बनना जरूरी है। अरे इसमें मनी ऑर्डर कहां से आ गया, पकौड़े क्या मैं बनाती नहीं। हाँ वो भी ठीक है, मनी ऑर्डर अभी तुम्हारे पास पहुंचा कहां है, वो तो रात को बड़ी अदा से पापा को दिया जाएगा, किलो, बड़े ने 1000 रुपए भेजे हैं। मम्मी, ये बड़े पापा लोग कौन से जमाने में रहते हैं? बताओ, 1000 रुपए से आजकल क्या होता है? चीजों के दाम तो देखो जरा, इन दोनों की दवाइयां भी 1000 रुपए में नहीं आती होंगी। मम्मी ने बेसन सने दोनों हाथ जोड़ दिए। चुप कर मेरी माँ, उठ पटांग बके जा रही है, किसी ने सुन लिया तो क्या कहेंगे? एक आध दिन मेरे सारे किए कराए पे पानी फेर देगी तू। उसका मन हुआ कहूं, मम्मी गुस्सा आता है, मेरा जी जलता है, तभी कहती हूँ। तुम दिन रात पिसती रहती हो लेकिन तुम्हारी कभी कोई तारीफ नहीं होती, और छठे छमासे वहां से कोई चीज आ जाती है तो दिन रात उसका बखान होता है। दादी के लिए तो बड़ी बहू जैसे रूह गुण की खान है, जिस जिससे कहेंगी, अरे दो दो बेटे कॉलेज में पढ़ते हैं, पर देखो उसे ऐसा लगता है जैसे कल ही ब्याह के आई हो। जब छोटी थी गौरी तो वो भी बड़ी मम्मी को बड़े मुग्ध भाव से देखा करती थी, लेकिन अब वो समझ गई है कि इस खूबसूरती के पीछे कितने साधन हैं, कितने प्रसाधन। अरे सुंदर दिखना, उसके लिए भी सुविधा चाहिए। यहाँ तो मम्मी सुबह कंघी चोटी करती हैं तो दिन भर में दोबारा आईने में झांकने की भी फुर्सत नहीं मिलती। मम्मी मैं खेलने जा रहा हूँ, गोलू आया पैर उछालते हुए और बिना मम्मी के हाँ की परवाह किए सीढ़ियां फलांगता हुआ चला गया। नीली जीन्स और पीली बुशर्ट में बहुत स्मार्ट लग रहा था। गोलू के लिए कपड़ों की कभी कमी नहीं होती, भैया लोगों के कपड़े छोटे होते ही इधर आ जाते हैं। गौरी को बहुत बुरा लगता है उसका इस तरह से उतरन पुतरन पहनना। मम्मी कहती, बेटा इसमें बुराई क्या है, अरे घरों में तो भाई बहन एक दूसरे के कपड़े पहनते ही रहते। वो तो भगवान को धन्यवाद देती है कि बड़े पापा के यहाँ कोई बेटी नहीं है, ना तो उसके लिए भी स्कर्ट सूट फ्रॉक्स आते ही रहते। पिछले दिनों बड़ी मम्मी ने एक कांजीवरम भेजी थी, बहुत सुंदर थी, महंगी तो क्या होगी ही। मम्मी किसी पूजा में पहनी थी तो उसमें अगरबत्ती छू गई थी। यहाँ वालों को तो वो छेद कहीं ढूंढने से भी नहीं मिला, पर वो होगा तो तभी तो वो साड़ी खारिज की गई थी। बड़ी मम्मी ने लिखा था कि गुड़िया के लिए इसका लांचा बनवा देना। गौरी ने साफ कह दिया कि अगर आपको टेलर की दक्षिणा देने का शौक हो तो दीजिए, मैं नहीं पहनूंगी। अब किसी को पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा कि इतनी सिलाई खर्च करे अगर इसको नहीं पहनना है। अब कभी कभार मम्मी किसी रिसेप्शन में उसे पहन देती है। जिस दिन मम्मी वो साड़ी पहनेगी दादी जरूर कहेंगे, ये वही साड़ी है ना जो बड़ी ने भेजी। आग लग जाती है गौरी को। मम्मी कहती, बेटा आपस में एक दूसरे के कपड़े पहनते हैं, तुम्हें इतना बुरा क्यों लगता है? अच्छा बड़ी मम्मी ने कभी तुम्हारी कोई साड़ी पहनी है? मम्मी उदास हो जाती है। तेरी बड़ी मम्मी के लायक कोई साड़ी मेरे पास है भी नहीं है ना, तो ठीक है, उनकी उतरन पहनने की क्या जरूरत है? मम्मी कहती, बेटा क्यों छोटी छोटी बातों में जी जलाती रहती है, तुम्हारी उम्र है ये सब झेलने की। फिर कभी कभी डांट भी देती है कि फालतू बातों में ध्यान मत दिया करो, हायर सेकेंडरी की परीक्षा देनी है कि नहीं, परीक्षा में ये सब कुछ नहीं आएगा, समझी? हाँ, गौरी भी जानती है कि अगर डॉक्टर होने का सपना पूरा करना है तो हायर सेकेंडरी में अच्छी परसेंटेज लानी है, PMT में अच्छी रैंक लानी है। उसके पापा के पास बड़े पापा की तरह लाखों रुपए थोड़ी हैं कि कहीं भी एडमिशन दिलवा देंगे। सच में भैया लोग बड़े भाग्यवान हैं, जिस विषय में चाहा, जिस कॉलेज में चाहा दाखिला मिल गया, वहां से पास होकर के निकलेंगे तो बड़े पापा उनको अमेरिका भेज देंगे आगे पढ़ने के लिए। फिर कोई नहीं पूछेगा कि हायर सेकेंडरी में कितनी परसेंटेज बनी थी, लेकिन उसे तो अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। लेकिन जब मन लहू लुहान होता हो तो कोई कैसे पढ़ाई करे? परिचित स्कूटर की आवाज सुनते ही उसने नीचे झांका, पापा लौट आए थे। और अब उसे भान हुआ कि वो बड़ी देर से गैलरी में खड़ी है। उसका इस तरह से छज्जे पर खड़ा होना दादी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कहती है, बड़े भले घर की लड़कियां कोई ऐसे छज्जे पर खड़ी होती है क्या? पर वो क्या करे, शाम को तो दम घुटने लगता है कमरों में। पापा ऊपर आए, उसकी चोटी खींची, फिर हंसते हुए अंदर चले गए। पापा की एक बड़ी अच्छी आदत है, कितने भी थके हारे आए हमेशा हंसते मुस्कुराते घर में घुसते हैं, और बच्चों से चुहलबाजी करेंगे, मम्मी से चुहलबाजी करेंगे, दादा दादी के हाथ हाल पूछेंगे और फिर फ्रेश होने जाएंगे। उनके आते ही घर का मौसम एकदम खुशगवार हो जाता है। रात खाना भी बहुत शानदार बना था, पालक के पकौड़े, पकौड़े वाली खीर, मीठी सिवैया, भरवा करेले, सूखे आलू, पुलाव। उस शाही सरंजाम देख करके गौरी के आग लग गई थी। उसका मन हुआ कि खाने के लिए मना कर दे, लेकिन मम्मी पे दया हो आई। बेचारी शाम से लगी हुई है, वो मना कर देगी, सब उसे मनाने में जुट जाएंगे, सबका मूड खराब हो जाएगा, वो खाने का सत्यानाश हो जाएगा। उसने बेमन से ही खाना खा लिया। सब लोगों ने तृप्त भाव से खाया। फिर पापा दादाजी के पास आकर के बैठ गए। थोड़ी देर बात करने के बाद दादाजी ने बड़ी अदा से पंडी की जेब से 500 के दो नोट निकाले और पापा को दिए। ये बड़े का एमओ आया था आज। रहने दीजिए ना आपके पास, जब जरूरत होगी मांग लूंगा, पापा ने कहा। अपनी किताबों में डूबी हुई गौरी कन्फ्यूज से सब नाटक देख रही थी। हर महीने ये सीन जरूर रिपीट होता है और उसे बड़ी गुस्सा आती। ए बुढ़िया, चल पान खाने चलते, पापा ने कहा तो एकदम हुलस उठी। सच्ची घर में बैठे बैठे बोर हो गई थी। पापा के साथ थोड़ा ठंडी हवा में घूमना अच्छा लगता है। चप्पल पहनते ही उसने पूछा, मम्मी नहीं चलेंगी क्या? अरे नहीं, वो शैतान का होमवर्क करवाएगी ना, दिन भर तो उसके हाथ आता ही नहीं है। पापा के साथ बाहर घूमने जाने में बड़ा मजा आता है। उनके पान की दुकान थोड़ी दूर है, लेकिन अच्छा लगता है पापा के साथ घूमना। पापा ने दुकान पे जाके अपने लिए सादा, मम्मी के लिए मीठे मसाले वाला, बच्चों के लिए गुलकंद वाला और दादा दादी के लिए बिना सुपारी वाला पान लगवाया। फिर बोले, चल आइसक्रीम खाते, सामने ही पार्लर था। पापा, घर जाने तक तो पिघल जाएगी, पास वाले दुकान से ले लेंगे ना। अरे खाएंगे भाई, घर पे तो सबने खा रखी है, हम ही दोनों तो रह गए। फिर वो लोग आइसक्रीम पार्लर में जाके बैठ गए। पापा ने उसके लिए बटर स्कॉच का ऑर्डर दिया और अपने लिए कसाटा का। फिर बोले, तूने दोपहर में आइसक्रीम क्यों नहीं खाई? गोलू ने चुगली की ना? नहीं, तेरी मम्मी बता रही थी। और मम्मी एक और बात बता रही थी कि आजकल बुढ़िया बहुत चिड़चिड़ी हो गई है, बात बात पे तनक जाती है। गौरी समझ गई कि उसको इसी समझाइश देने के लिए यहाँ लाया गया है, पान का तो बहाना था। लेकिन वो डरी नहीं, दिलेरी से बोली, हाँ पापा, आजकल मुझे बहुत गुस्सा आता है। किस पे बेटा? दादाजी पर। ऑफ ऑल द पर्सन, दादाजी पर? उन बेचारों ने क्या किया है? पापा, उन्होंने कितना बड़ा अन्याय किया है बताइए। एक बेटे को तो इतनी ऊंची जगह पहुंचा दिया और हमें गुस्सा नहीं आएगा भला? बेटे, तेरे दादाजी ने कोई गलती नहीं की, बस उनका हिसाब जरा गड़बड़ा गया। मतलब उन्होंने यह चाहा था कि एक बेटे को मैं शिखर पे पहुंचा दूंगा, फिर दूसरे को वो अपने आप ऊपर ले लेगा। लेकिन वो हो नहीं पाया। मतलब आधा हिस्सा तो प्लानिंग का ठीक रहा। बड़े भैया एक के बाद एक सीढ़ी चढ़ते चले गए, हर क्लास में अव्वल आते रहे, स्कॉलरशिप लेते रहे। सबसे बड़ी परीक्षा भी उन्होंने एक झटके में पास कर ली और बढ़िया सी पोस्टिंग मिल गई। बाबूजी को लगा कि उनका श्रम, उनका खर्चा सफल हो गया है, लेकिन इस सुख की छांव में वो ज्यादा दिन तक नहीं रह सके। क्यों? पोस्टिंग होते ही रिश्तों की बाढ़ सी आ गई, एक से एक रिश्ता के मुंह में पानी आ जाए। बहुत दिन तक वो अपने को रोक नहीं सके और एक जगह हाँ करनी ही पड़ी। बहुत अच्छा घर था, उनके मुकाबले के लिए फिर बाबूजी ने अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया। लोग बेटी की शादी के लिए जमीन जायदाद बेचते हैं, बाबूजी ने बेटे की शादी के लिए बेचा। लेकिन जिसके लिए ये सब किया, वो ना तो इस घर से जुड़ सकी ना इन लोगों से, बल्कि अपने माँ बाप को कोसती रही कि मुझे किस दलिद्र में ला के पटक दिया है। और उनकी बातें सुन सुनकर बड़े भाई साहब ऐसे हीन बोझ से ग्रस्त हुए कि महीनों घर की सुध ही नहीं ली। फिर क्या, थोड़े दिन तो ठीक ठाक चलता रहा। हमने सब्र किया कि चलो नई नई शादी है, अभी उनको तंग करना ठीक नहीं, लेकिन कब तक? घर की हालत डामाडोल होने लगी। मैंने तय कर लिया था कि हम हाथ नहीं फैलाएंगे, उनको कल आएगी तो ठीक है, फिर मैंने अपनी पढ़ाई अदबीस में छोड़ दी और नौकरी कर ली। वो तो तुम लोगों के भाग्य से विभागीय परीक्षा देते देते यहाँ तक पहुंच गया हूँ, नहीं तो शायद अभी तक क्लर्की ही करता होता। बड़े पापा तब पैसे नहीं भेजते थे क्या? अरे बहुत बाद में भेजना शुरू किया, पहले 500 भेजते थे, अब 1000 भेज रहे हैं। उनके वैभव का इतना सा ही अंश अम्मा बाबूजी के हिस्से में आया है, इसी में वो अपने कर्तव्य की इति पूर्ति समझते हैं। पापा आप नाराज तो होंगे, पर एक बात कहूं, बड़े पापा से कहिए कि कर्तव्य का रेट थोड़ा बढ़ा दें। 1000 रुपए में आजकल कुछ नहीं होता बेटा, अब वो 1000 भी कहां। मतलब पापा थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले बेटा किसी से कहोगी तो नहीं? दादाजी से तो बिल्कुल ही नहीं। हाँ क्या? तुम्हें मालूम है ना 2 साल पहले सोनू की मणिपाल में एडमिशन हुई थी, एडमिशन में बहुत खर्चा हुआ था। उसके बाद इस साल मोनू की मेडिकल में हुई है और भाभी का आग्रह था कि दोनों बच्चे मणिपाल में ही पढ़ेंगे। सोनू से 1.5 गुना ज्यादा मोनू का खर्चा आया है, और सिर्फ एडमिशन का खर्च नहीं, ट्यूशन फीस है, मेज का बिल है, एयर कंडीशन कमरों का किराया है, हर बार आने जाने का फ्लाइट का खर्चा है, और बच्चों का पॉकेट मनी। भैया तो एकदम घबरा गए हैं, खर्च में कहाँ कटौती करें उनकी समझ में नहीं आ रहा था। एक यही एकमात्र खर्च था जो भाभी को फालतू लग रहा था, इसलिए इसी को बंद किया गया। बड़े भैया ने मुझसे कहा कि 2-3 साल जरा तंगी रहेगी, नहीं भेज पाऊंगा। लेकिन बनिया ऑर्डर तो आता है, आज भी आया था। वो तो बेटा मैं टूर पर जाता हूँ ना, यहाँ वहां से भेज देता हूँ। दादाजी को पता नहीं चलता, बुढ़ापे का यही तो मजा है बेटा, वो इतने गदगद हो जाते हैं कि उनको अक्सर भी समझ में नहीं आती। और फिर मैं प्रणाम के सिवा ज्यादा कुछ लिखता भी तो नहीं। पापा मेरी समझ में नहीं आता कि इतने उठा पटक करने की जरूरत क्या है, वैसे भी 1000 रुपए कोई मायने नहीं रखते। बेटा बात रुपयों की नहीं है, ये मनी ऑर्डर तेरे दादा दादी के लिए संजीवनी है, उनका मानसिक संबल है। ये बात उन्हें एहसास दिलाती है कि उनका बड़ा बेटा उन्हें भूला नहीं है, अपने कर्तव्य के प्रति विमुख नहीं है, और छोटे के भरोसे छोड़ करके निश्चिंत नहीं हुआ है। जिस दिन उनको सच्चाई का पता लगेगा ना बेटा, वो टूट जाएंगे। इसीलिए मैंने बड़े भैया से भी कहा है कि आप पैसे भेजें ना भेजें, पर बाबूजी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। लौटते समय रास्ते में पापा ने कहा, अब तो हमारी गुड़िया किसी पे नाराज नहीं है ना? पापा मैं बहुत नाराज हूँ। फिर किस पे? दादाजी पे। अरे वाह, ये फिर मेरी मुर्गी की एक टांग है? इतनी बड़ी रामायण सुने क्या फायदा हुआ? पापा मैं दादाजी पे इसलिए नाराज हूँ कि एक बेटे को तो उन्होंने इतना बड़ा दिल दे दिया है, और दूसरे को शैतान। पापा ने उसकी पीठ पर एक धौल जमाई और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। जिंदगी एकदम खूबसूरत हो गई थी।